अब यहाँ इशू में श्री अरविंद एक मूल प्रश्न उठाते हैं, एक ऐसा प्रश्न जो कई बार उठाने का साहस भी मनुष्य नहीं करता है, और वो प्रश्न है क्या भाग्य बदला जा सकता है। ये एक बहुत एक जटिल प्रश्न है। अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारे आध्यात्मिक पथ हैं, संप्रदाय हैं, भगवान को पाने के रास्ते हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि लेकिन जो आपके भाग्य में है वो तो लिखा हुआ है, वो आपको भोगना पड़ेगा, उसको कमोबेशी करके तीन चार धारणाएं, एक है कि भगवान का रास्ते ठीक है आप चल रहे हो, लेकिन जो भाग्य में है वो भोगते हुए आप जाएंगे। एक दूसरा है कि उसको थोड़ा बहुत कम किया जा सकता है, मिटिगेट किया जा सकता है, कि आप जिस इंटेंसिटी से उसको झेलोगे अंदर में सहारा मिल सकता है, वो जो कुछ होना था वो थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन किसी ना किसी रूप में उसको आपको भोगना है। दिस इज द धारणा। श्री अरविंद प्रश्न उठाते हैं, रिवॉल्यूशनरी तो वो है ही, कि सच में ऐसा है क्या, क्या भाग्य बदला नहीं जा सकता। माता जी ऑफकोर्स कहती हैं, ग्रेस कैन कंप्लीटली कैंसिल कर्मा। अब यहां पर श्री अरविंद इस प्रश्न को सावित्री के माध्यम से उठा रहे हैं। सावित्री के जीवन में आज के दिन सत्यवान की मृत्यु लिखी है, वो एक प्रकार का भाग्य है, एक ऐसा भाग्य जो उसे नहीं चाहिए। लेकिन क्या हमारे नहीं चाहने मात्र से ये चीज बदली जा सकती है? यहाँ एक बहुत संक्षेप में श्री अरविंद ये सब चीजों का एक संक्षिप्त विवरण दे रहे हैं। बाद में बुक ऑफ फेट में इसको बहुत विस्तार से बुक 6 में बताया जाएगा। पेज 12, कल हम लोगों ने पढ़ा था, एन एब्सोल्यूट सुपर नेचुरल डार्कनेस दैट आवर हेड फॉलन नाउ ऑन सावित्री। अक्सर थोड़े मॉडर्न माइंड या वेस्टर्न ओरिएंटेड लोग कहते हैं भारतवर्ष में सब बड़े फेटलिस्टिक हैं, भाग्य है भाग्य है भाग्य है बोलते रहते हैं। एक्चुअली ये सही नहीं है। अगर हम लोग अपने स्क्रिप्चर्स को केवल देखें, जब रामचंद्र जी की पत्नी हरण हो जाती हैं तो राम जी ये नहीं कहते मेरा भाग्य है क्या करूँ, अच्छा है मैं संन्यास ले लेता हूँ, ऐसा नहीं कहते। वो पूरी सेना लेकर पूरे बल के साथ रावण के लंका ध्वस्त करते हैं। ना कृष्ण कहते हैं पांडवों को तुम्हारा भाग्य था, उन्हीं को कौन टाल सकता है, लिखा था, जंगली भेजा है ना दुर्योधन ने, ग्रेस समझ लो, तपस्या करो छोड़ दो, और वो तो यही चाह रहे थे पांडव। कृष्ण कहते नहीं, उठो युद्ध करो, और वहां पे उनको कहते दोनों संभावनाएं हैं। प्रारंभ में ऐसे कहते हैं जीतोगे तो राज्यम समृद्धम भोगोगे, और अगर मृत्यु को प्राप्त हुए तो इससे उत्तम क्या क्षत्रिय की मृत्यु होगी। दोनों संभावनाएं बताते हैं, ये नहीं कहते कि देखो ये तो भाग्य है डिसाइड हो चुका है। उसके बाद वो दिखाते हैं विजन की, सब कुछ निर्धारित हो चुका है, फिर बताते हैं तुम्हारी इंस्ट्रूमेंटैलिटी है। बहुत सारे सत्य भाग्य को लेकर भारतवर्ष में फेटलिज्म बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत गलत चीज है जो मानसिकता में आ गई कि हर चीज में हम बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। तो यहां सावित्री के सामने भी वो अवसर आया है जो द्रौपदी के सामने आया था, जो सीता के सामने आया था। सीता को भी चुनाव करने को रावण कहता है, चुन लो त्रिलोकाधिपति की पत्नी बनना, मैं तुम्हें साम्राज्ञी बना दूंगा, या फिर तुम जानती हो क्या हस्त होने वाला है। सीता चुनाव करती है राम, और किसके सहारे पर, मात्र अपने फेथ के सहारे पर, तृण को लेकर ओट में, तेरी हिम्मत है तो इसको पार करके दिखा दे। दिस इज इंडियन थॉट। सावित्री के सामने भी ये चुनाव है, इसलिए श्री अरविंद कह रहे हैं दैट आवर हैड फॉलन नाउ ऑन सावित्री, ए पॉइंट शी हैड रीच्ड वेयर लाइफ मस्ट बी इन वेन। व्हाई लाइफ, अब तक का सारा जीवन, बड़ी हुई सब कुछ, फिर उन्होंने अपना हृदय अपना सारा बीइंग प्रेम के लिए किसी को दे दिया, तो अब अगर उसकी मृत्यु हो रही है तो अब तक की जो कुछ भी उन्होंने प्रयास किया, जो कुछ इस दिशा में, इट बिकम्स इन वेन। तो पर्पस क्या था इसका, सारे खेल तमाशे का क्या मतलब है? मायावादी बोलेंगे तो इल्यूजन था, आपको जगाया जा रहा है। श्री अरविंद ऐसा नहीं कह रहे, वो इल्यूजन नहीं है, वो आपको युद्ध की चुनौती है। क्यों? ताकि हमारे अंदर आत्म तत्व जाग सके, ये एक डिफरेंट विजन है। और इन हर अनबॉर्न एलिमेंट अवेक हर विल मस्ट कैंसिल हर बॉडीज डेस्टिनी। तो ये दो चुनाव हैं, या तो मैं ये मान लूं कि जो कुछ भाग्य है उसके आगे मेरा कोई वश नहीं चलेगा, या ये मानूं कि मेरे अंदर एक आत्म तत्व है जो पार ब्रह्म परमेश्वर का अंश है, उनकी संतान है। भाग्य कौन बनाता है? मेरे ही विचार भावनाओं को, पास्ट के मेरे ही कर्मों को लेकर देव दानव मिलकर भाग्य की रचना करते हैं। लेकिन मेरे कर्म, मेरे विचार, मेरी भावनाएं, देव दानव, इन सब के ऊपर कॉस्मिक लॉ, इन सब के ऊपर इन सब का एक विधाता, एक नियंता है, और वो है साक्षात परमात्मा, और हम उसकी संतान हैं। तो हम क्यों स्वीकार करें? अब यहां से अरविंद ये नहीं कह रहे कि डिजायर, फैंसी, विश, विशफुल थिंकिंग से कुछ नहीं होता है। इन हर अनबॉर्न एलिमेंट अवेक हर विल मस्ट कैंसिल हर बॉडीज डेस्टिनी, नॉट डिजायर एंड होप। डिजायर एंड होप में वो शक्ति नहीं है। फॉर ओनली द अनबॉर्न स्पिरिट्स टाइमलेस पावर कैन लिफ्ट द योक इम्पोज्ड बाय बर्थ इन टाइम। हमारे अंदर वो शक्ति है जो अगर हम जागृत करें तो शरीर के ऊपर जो डेस्टिनी, रोग, शोक इत्यादि के आक्रमण होते हैं, हम चाहें तो उसको कैंसिल कर सकते हैं। ओनली द सेल्फ दैट बिल्ड्स दिस फिगर ऑफ सेल्फ कैन रेज द फिक्स्ड इंटरमिनेबल लाइन दैट जॉइंस दीज चेंजिंग नेम्स दीज नंबरलेस लाइव्स। हम सब नाम रूप, कितने नाम रूप धारण कर चुके हैं, और हर बार हम एक ही शब्द यूज करते हैं, मैं। तो पिछले जन्म का मैं और इस जन्म का मैं तो बिल्कुल अलग है, लेकिन एक पीछे में कॉमन सूत्र है जो इस सबको धारण किए हुए है, और इन सब के पीछे वो जीवात्मा है जो ये सेल्फ विद ए कैपिटल एस, जो इन सब नाम रूपों को अपने अंदर धारण करता है और अपने से निसृत करता है, उस अनुभव के द्वारा एक विकास की धारा में बढ़ने के लिए, या हम जो कहें अपने अंदर छिपे परमात्म तत्व को प्रकट करने के लिए। दैट इज द पर्पस ऑफ इवोल्यूशन। दीज न्यू ऑब्लिवियस पर्सनैलिटीज एंड कीप स्टिल लर्किंग इन अवर कॉन्शियस एक्ट्स द ट्रेल ऑफ ओल्ड फॉरगॉटन थॉट्स एंड डीड्स। जैसे हैबिट होती है ना, आदमी बचपन में आदत हो जाती है, एक समय होता है जब वो रसगुल्ला नहीं खाता है, उसको नमकीन पसंद है। फिर भारतवर्ष में क्या है, हर ओकेजन पर आपको मिठाई देनी है, जन्मा तो मिठाई, शादी तो मिठाई, डाइवोर्स तो मिठाई, बच्चा तो मिठाई, मृत्यु तो मिठाई, मतलब सब चीज़ में मिठाई देते हैं। तो धीरे धीरे जब तक एक आम भारतीय 21, 22, 25 का होता है तो उसको मीठे की आदत लग जाती है। अब ये हैबिट हो गई, अब आपको ओकेजन नहीं है पर आपको मिठाई चाहिए। फिर जब 40 का होता है तो डायबिटीज डिक्लेयर हो जाती है, डॉक्टर बोलते मिठाई नहीं खाना है, वो भी मन बना लेता है मिठाई नहीं खाऊंगा। बाहर निकलता है, 24 जी की दुकान पास में है, एकदम रबड़ी, नहीं 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 नहीं, पर फिर भी एक बार खा लेने में क्या है, अभी तो नया नया डायबिटीज है। अब ये हैबिट से वो चलता रहेगा, आपको पता है कि नहीं खानी चाहिए पर वो फिर से आदमी। एक बहुत श्री रामकृष्ण परमहंस इसके बारे में बताते हैं, ऊंट वो जो झाड़ को खाता है जिसमें कांटे हैं, मुख से खून निकल रहा है पर फिर भी वो खाएगा। ये मनुष्य की अवस्था होती है। यहाँ ओल्ड फॉरगॉटन थॉट्स एंड डीड्स कीप्स लर्किंग इन अस, हमारे वो नस नस में, मिठाई सामने आए अच्छा थोड़ी सी ले लेते हैं, ये हैबिट है। तो ये एक स्तर पे ही नहीं, हर चीज पर। इवन माँ कहती है इट इज ए हैबिट टू डाई, सेल्स को ये आदत हो गई है कि हमें मरना है। क्यों? जन्म से हम यही सुनते आए हैं, अनेकों अनेकों जीव यही गति को प्राप्त होते हैं, सब तरफ कंडीशनिंग है कि आप अब 40 के हो गए, कैसे वो एक आध बाल सफेद हो रहा है, अरे बाल छिपा लूं, लगा लूं कुछ, थोड़े समय बाद दांत हिल रहा है, 55 के हो गए होंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दांत इम्प्लांट करा लिया। फिर भूलने लगे, अरे आज डेट क्या है, अच्छा आज ये डेट है, 60 आ गए हो, 60 क्रॉस कर गए, कहां तक आदमी छिपाएगा। कलेक्टिव सजेशन है सब तरफ, आप चाह रहे हैं नहीं भी सोचना तो सब लोग बोलेंगे नहीं तो सोचेंगे कि नहीं आप तो बूढ़े हो रहे हो। इट इज नॉट हेल्दी किसी को ये कहना आप बीमार हो, बूढ़े हो, सब किसी को नहीं कहना चाहिए। बट हम लोग ये चीज मतलब, क्योंकि बुढ़ापे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु वार्धक्य के विचार के साथ बहुत चीजें जुड़ी हुई हैं मानसिकता में, कि अब हम रिटायर हो गए, अब हमें प्रयास नहीं करना, अब हमको लाइफ बैठ के एंजॉय करनी, सब रोगी हो जाऊंगा, ये सब वार्धक्य के विचार के साथ जुड़ी हुई है, ये पैकेज डील है। तो ये सब हमारे अंदर एक हैबिट के रूप में सेल्फ प्रोग्राम्ड है। तो वहां पर इसको कौन बदल सकता है, द सेल्फ, वो चाहे तो। डिसोन द लीगेसी ऑफ आवर बरीड सेल्व्स, द बर्डन शम हायरशिप टू आवर वैनिश्ड फॉर्म्स, एक्सेप्टेड ब्लाइंडली बाय द बॉडी एंड सोल। हम लोग केवल किसी और के कर्जदार नहीं होते, हम अपने खुद के कर्जदार होते। हमारे पेरेंट्स हमारे लिए जो छोड़ते हैं वो तो बात की बात है, हमने स्वयं अपने लिए जो वो चारवाक सिद्धांत है ना, खाओ पियो खूब लोन लो और वापस ना करो, क्योंकि इस जन्म के बाद दूसरा जन्म है ही नहीं। और सही बात है, अगर इस जन्म के बाद दूसरा जन्म नहीं है तो लॉजिकली ही इज राइट। लेकिन यहां पर वो कहा जाता है नहीं, वो जो लोन तुमने लिया था, खूब मूर्ख बनाया था, कोई बात नहीं, एंजॉय कर लो, अभी आएगा तुम्हारा भी टाइम आएगा लोन वापस करने का। सो यहां पर वो एक्सेप्टेड ब्लाइंडली। लेकिन अब प्रॉब्लम कब होती है, जब अगले जन्म में आपके अंदर कोई और चीज आ गई, जैसे रत्नाकर के अंदर वाल्मीकि जन्म लेने लगा। अब तब क्या होता है, अब देखिए क्या होता है, हमारे ही उसमें लोग कहते हैं ना भाग्यवादी है, नहीं भाग्यवादी नहीं है, वाल्मीकि के भाग्य, रत्नाकर के भाग्य में नॉर्मल कोर्स में क्या होना था, एक डाकू था, वो भी खूंखार डाकू। तो आजकल तो डाकू पॉलिटिक्स में चले जाते हैं, लेकिन रत्नाकर ने दूसरा कोर्स ले लिया, तो क्या हुआ उनकी गति, उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ही वॉज नो मोर जस्ट ब्रह्म समान जो हो गया, उसको क्या कौन सा आप कर्मों में बांधेंगे। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन थॉट, कि ये सब कुछ आप डिसोन कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि ओ अच्छा मैंने पाप किया था, बड़ा पापी था, ओहो अब तो मुझे कर्म भोगने पड़ेंगे, कोई आवश्यक नहीं। एक रूट है, लेकिन वो ये रूट है, पॉलिटिक्स का रूट नहीं है कि अब मुझे पावर आ जाएगी तो मैंने जो कुकर्म किए थे मैं बच जाऊंगा, दैट इज नॉट द रूट, दिस इज द रूट। यहां पर उसका वर्णन है, एन एपिसोड इन एन अनरिमेम्बर्ड टेल, इट्स बिगिनिंग लॉस्ट, इट्स मोटिव एंड प्लॉट कंसील्ड, ए वंस लिविंग स्टोरी हैज प्रिपेयर्ड एंड मेड आवर प्रेजेंट फेट चाइल्ड ऑफ पास्ट एनर्जीज। ए वंस लिविंग स्टोरी, हम भूल चुके हैं क्या था, लेकिन वो घूम कर आती है, वो ऊर्जा जो हमने कभी संसार में भेजी थी, वो एक पूरा सर्किल लगा के, फिजिक्स में भी भौतिक में भी यही सिद्धांत है कि आप प्रकाश को या किसी भी शक्ति को आप प्रसादित करते हो तो पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा के लास्ट में आपके पास आएगी, तो वे ऊर्जाएं जो हमने भेजी थी। अब शरीर बदल गया, लेकिन जो ओरिजिनेटर था ऊर्जा का, अल्टीमेटली वो सब कुछ आत्मा की स्वीकृति, तो वो नहीं मरा है, तो घूम के लोकेट करके सब जगह जाके वापस लौट रही है, लोकेट करती है, उसके अंदर ऐसा सिस्टम है, सिग्नल है, यहां से मैं निकली थी। इसीलिए कहा गया है कि रोज हम लोगों को सुबह सुबह, बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स में माता जी भी कहती हैं एक अन्य जगह, सारी सृष्टि में थॉट्स ऑफ लव, थॉट्स ऑफ गुडविल, थॉट्स ऑफ काइंडनेस, सर्वे भवंतु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, क्यों, ये बहुत अच्छी पॉलिसी है। इसलिए लोग बैंक में डिपॉजिट करते हैं, ये आपने डिपॉजिट, हालांकि इसको पॉलिसी के रूप में नहीं करना चाहिए क्योंकि तब तो स्वार्थ आ गया, पर रोज सुबह उठ के गुडविल, सद्भावना, सदीक्षा, ये प्रभु संसार में सबका कल्याण हो। तो अब ये जो विचार आपने प्रसारित किए, अब ये घूम कर कई समय बाद इस जन्म में, अगले जन्म में, कौन जाने, वो आपके पास आएंगे मल्टीप्लाई होकर। और यदि आपने इसका बुरा हो, इसका हित हो, वो भी विचार प्रसारित किए, वो भी घूम फिर कर बढ़ करके आपके पास आएंगे। कब आएंगे ये नियति निर्धारित करेंगे। तो यहां पर उसका वर्णन है, ए वंस लिविंग स्टोरी, आपको खुद नहीं मालूम, बड़ी अच्छी स्टोरी थी, कैसे किसी ने बचपन में घर गया एक किसान के, तो उसको, गरीब किसान था, उसने आश्रय दिया, भोजन दिया, उसने कहा मैं कितने पैसे दूं, कहा नहीं इसकी जरूरत नहीं है, ये तो हमारा कर्तव्य था। यह अमेरिका की कहानी है, सच्ची कहानी है। ये व्यक्ति काफ़ी बड़ा बाद में फेमस डॉक्टर बना, सब कुछ बना। एक बार उसके पास एक केस आया, बड़ा भयानक केस, बहुत रुपए लगने वाले थे। उसने सब ट्रीटमेंट किया, सब कुछ किया, जब नाम देखा, गांव देखा, तो याद आया, अरे ये तो वही लड़की थी जिसने मुझे एक गिलास दूध दिया था। तो उसने अपने सब लोगों को कहा कि इससे कोई बिल नहीं चार्ज करना, इट विल ऑल बी ऑन मी। तो वो तब तक सोच रही पता नहीं क्या होगा, लास्ट में कितना बिल आएगा, अभी तो मुझे सब कुछ हो गया। तो जब बिल का टाइम आया तो घबरा के, क्या करना है, ये मैं कैसे दूंगी। तो कहती कि कितना बिल आया है, तो उसमें डॉक्टर लिख करके देता है, वन ग्लास ऑफ मिल्क रिटर्न्ड विथ थैंक्स, ऑलरेडी पेड इन एडवांस, रिटर्न्ड विथ थैंक्स। अद्भुत कहानी है, वन ग्लास ऑफ मिल्क ऑलरेडी पेड रिटर्न्ड विथ थैंक्स, क्योंकि उस समय उसको जब जरूरत थी। ये हमारे जीवन का एक सत्य है, इसीलिए सबकी जितनी सहायता, जितना गुडविल, ये बेसिक थिंग है, वो घूम के आएगी। हाँ, बस अरविंद कहते हैं इसको पॉलिसी के रूप में नहीं करना चाहिए, तब तो हम लोग, अच्छा कब आएगी, 7 वर्ष में आएगी, 10 वर्ष में, कौन सी पॉलिसी है, तब तो स्वार्थ हो गया, एक सहज अवस्था हो जानी चाहिए। और निश्चित रूप से आएगा, वाई द फिक्सिटी ऑफ द कॉस्मिक सीक्वेंस फास्टेंड विद हिडन इनएविटेबल लिंक्स शी मस्ट डिसरप्ट डिसलॉज बाय हर सोल्स फोर्स हर पास्ट ए ब्लॉक ऑन द इमॉर्टल्स रोड मेक अरेस्ट ग्राउंड एंड शेप ए न्यू हर फेट। लेकिन इस समस्या, ये जो चक्रव्यूह की है वो ये है, बुरे विचार बुरी भावनाएं भी आती हैं, अच्छे विचार अच्छे भावनाएं भी आते हैं, पर भारतीय आध्यात्मिक दर्शन बताता है दोनों ही हमको बांधते हैं। सत्व भी बांधता है, रजस तो बांधता ही है, तमस तो पूरा चेन में, जेल में है आप व्यक्ति, तो इससे कैसे मुक्त हो, वी हैव टू गो इवन बियॉन्ड इट। यहां पर उसका वर्णन है कि कैसे, 3-4 पंक्तियां नीचे, या रादर हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। पेज नंबर 18 पर, 18 2-4 पेज आगे, फिर से इसी बात को श्री अरविंद एक अलग अंदाज से प्रस्तुत कर रहे हैं, मनुष्य की क्या दशा है। पेज 18, ए चैटल एंड ए प्ले थिंग ऑफ टाइम स्लॉट्स, जैसे हम लोग रोज टीवी देखते हैं ना, सोप ओपेरा, हॉरर शो, भक्ति सीरियल सब देखते हैं, वैसे ही हम लोगों के जीवन को सीरियल बना के कोई देख रहा है। कल्पना करें, टाइम स्लॉट्स कि सोप ओपेरा देखना है, रोने धोने का नाटक, अरे चलो उस फलां घर में रोज झगड़ा होता है, नाटक होता है, चलो वहां चलते हैं, वहां कलह हो रही है, थोड़ी देर देख रहे हैं, क्या बोर हो गए इससे, दूसरे घर में चलते हैं, जरा भक्ति सीरियल देखना है। तो प्ले थिंग, ये चैटल एंड ए प्ले थिंग ऑफ टाइम स्लॉट्स, और वन मोर पॉन हु कम्स डेस्टाइन टू बी पुश्ड वन स्लो मूव फॉरवर्ड इन ए मेजरलेस बोर्ड इन द चेस प्ले ऑफ द अर्थ सोल विद डूम सच इज द ह्यूमन फिगर ड्रॉन बाय टाइम। कबीरदास जी कहते हैं ना, जगत चबेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। कई बार आप देखेंगे यहां पर, ये दृश्य में देखता हूं, बाकी जगह भी होगा, बकरी को या मुर्गी को ले जा रहा है व्यक्ति, बकरी को विशेष रूप से, स्कूटर में बैठा है, बकरी पीछे बैठी है, बांध रखा है उसने, मुख में उसके कुछ भोजन डाला है, बकरी चारों तरफ ऐसे देख रही है, मानो बड़ा आनंद आ रहा है, देखो मैं स्कूटर में जा रही हूं, पास में लोग पैदल चल रहे हैं, सोच रही होगी कि क्या निम्न कोटि के जीव, मैं स्कूटर में जा रही हूं, खा भी रही हूं, मालूम नहीं है उसको कि हलाल होने जा रही है। दिस इज द फिगर ऑफ टाइम, जैसे चेस बोर्ड पे। तो क्या सचमुच हमें ऐसा जीवन जीना है? नहीं। इसलिए नेक्स्ट लाइन आती है, कॉन्शियस फ्रेम वॉज हियर ए सेल्फ बॉर्न फूल। सावित्री इसलिए नहीं आई है, इस दासत्व को स्वीकार करने नहीं आई है, तो मुक्ति का मार्ग खोलने आई है। अब फिर से एक बार शेयरविंद बताते हैं मनुष्य की दशा, किस जेल में हम लोग हैं। इन दिस एनिग्मा ऑफ द डस्क ऑफ गॉड, दिस स्लो एंड स्ट्रेंज अनइजी कॉम्प्रोमाइज ऑफ लिमिटिंग नेचर विद ए लिमिटलेस सोल। अब देखिए, संसार में एक स्टैटिस्टिक्स ले लें और पूछा जाए, प्रेम चाहिए घृणा चाहिए, शांति चाहिए या झगड़ा चाहिए, आनंद चाहिए दुख चाहिए, ज्ञान चाहिए या ज्ञान चाहिए, क्या दो उत्तर होंगे? एक ही उत्तर होगा, कटिंग अक्रॉस ऑल डिफरेंसेस। आप अमेरिका में पूछेंगे यही उत्तर होगा, भारतवर्ष में पूछेंगे, अमीर को गरीब को, सबका उत्तर यही होगा। अब पूछिए, अच्छा तुमको झगड़ा नहीं चाहिए तो रोज झगड़ा क्यों करते हो? मैं कहां करता हूं, फलां फलां करता है। शांति चाहिए हां, लेकिन वो पहले अशांति का। आनंद चाहिए हां, पर ऐसे कर्म क्यों करते हो जिससे दुख निश्चित रूप से आएगा, आनंद पाने के लिए। ज्ञान चाहिए हां, तो तप करो, तप नहीं होता, ज्ञान चाहिए। अब देखिए, लिमिटिंग नेचर विद ए लिमिटलेस सोल, आत्मा की संभावनाएं अनंत हैं, असीम हैं, हम सब ये चाहते हैं, पर नेचर अभी भी पशु का है। इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन योगा का इससे डायरेक्ट बेयरिंग है। अगर हमारा बाहरी नेचर, हमारे शरीर का गठन, हमारी मानसिकता पशु की तरह होगी, तो हम कितना भी अपने अंदर उच्च भीपसा ले आए, ये जब तक चेंज नहीं होगा। इसीलिए माँ कहती हैं, सालवेशन इज फिजिकल, जब तक देह रूपांतरित नहीं होता तब तक किसी ना किसी रूप में हम सीमित रहेंगे। ये तो एक जेल है ना, ऊपर हम पहन लेते हैं, जैसे ही इसको पहनते हैं उसके अनुरूप चीजें। एक अच्छा से अच्छा आदमी बहुत सारा एक बैठा हुआ था आश्रम के अंदर, बड़े अद्भुत विचार आ रहे थे, बाहर निकला, अचानक पुलिस आई, पकड़ कर ले गई, जेल में डाल दिया। अब देखिए उसके विचार कैसे आएंगे, अनले जिन्होंने बहुत आत्मसंयम किया, वो अच्छा, जिन्होंने आत्मसंयम भी किया अंदर मुक्त हो गए, परंतु अब वो उस मुक्ति को किसी रूप में अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो प्रिजन के अंदर है। तो ये मनुष्य की दशा है। वेयर ऑल मस्ट मूव बिटवीन एन ऑर्डर्ड चांस एंड एन अनकेयरिंग ब्लाइंड नेसेसिटी टू हाई द फायर स्पिरिचुअल डेयर नॉट ब्लेज। शुरू शुरू में जब मां शेरविंद को पढ़ते हैं तो सतत अभिप्सा, कितना अच्छा लगता है पढ़ना, प्रयास करता है व्यक्ति, एक दो दिन नहीं हो पाता है, कहता है होगा, एक साल दो साल हो जाते हैं, फिर अपने प्रकृति से जूझने लगता है, फिर कहता है ये तो कठिन है, वो जो शुरू में बड़ा सरल लगता था कठिन है, तब उसको, इसलिए शिरविंद कहते हैं पहले प्रकृति से स्वयं को सेपरेट करना सीखो। ये कठिन किसके लिए है? प्रकृति के एक भाग के लिए है। लर्न टू पुट द प्रॉब्लम इन परस्पेक्टिव। आत्मा वही चाहती है, कितना भी कठिन हो वही चाहती है, लेकिन प्रकृति तैयार नहीं होती है। तो यहां उसका वर्णन, और ऐसा क्यों है ये भी बताया जा रहा है, क्यों भगवान ने ऐसा बनाया है, क्यों नहीं सीधा एक बार अभिप्सा उठी और कल भगवान मिल गए, है ना, कितना अच्छा होता। कई बार लोग पूछते हैं क्या इतना वर्षों जन्मों लग जाते हैं, ऐसा होना चाहिए कि आज पता चला और भजन गाया और भगवान प्रकट हो गए। उसकी समस्या है, समस्या क्या है, इफ वंस इट मेट द हाई द इंटेंस ओरिजिनल फ्लेम एन एंसरिंग टच माइट शैटर ऑल मेजर्स मेड एंड अर्थ सिंक डाउन विद द वेट ऑफ द इंफिनिट। मजाक नहीं है भगवान मिलना। अर्जुन को कितना तप करना पड़ा, उसका पूरा जीवन तप है बचपन से लेकर, तब भी युद्ध क्षेत्र में खड़ा है तब वो अपना विजन दिखाते हैं। अगर अर्जुन कहता है नहीं नहीं मैं जो भी हो जाए मैं तो बड़ा सात्विक आदमी हूं, ये सब पाप नहीं कर सकता हूं, तो वो नहीं देख पाता। तैयारी देखिए, सब ओर जाके सब इस युद्ध की विभीषिका में जहां कुछ भी सर्टेन नहीं है, या तो खुद मरेगा या पूरे राष्ट्र को डुबा देगा, ऐसे ऐसे वहां उस समय योद्धा हैं। तो उस भूमि पर जाकर तैयार होते हैं अर्जुन विजन ऑफ द इंटीग्रल डिवाइन। क्यों? क्योंकि अगर तैयारी नहीं है, अगर अचानक ऐसी, श्री कृष्ण तो कब से जानते थे उनको मित्र रूप में, अर्जुन ने ऐसे गले पर हाथ रखा, कहते अरे अर्जुन मैं बताता हूं मैं कौन हूं और दिखा देते, तो अर्जुन कहते अरे आप ये सब मत करो, डोंट प्ले विद मी। वही देखिए, जब तैयारी नहीं होती तो क्या होता है, दुर्योधन की तैयारी नहीं है फिर भी एक कृपा के रूप में श्री कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते हैं। जब शांतितूत बन के आते हैं कि देख मैं कौन हूं, मैं कह रहा हूं तुझे, स्वयं भगवान हूं, मान ले मेरी बात, तो दुर्योधन की तैयारी नहीं है, दुर्योधन का माथा और घूम जाता है। अच्छा अब मुझसे छल प्रपंच माया करोगे, अब तो मैं पक्का हट करके लड़ूंगा। देखिए तो इसीलिए श्री अरविंद बताते हैं कि अगर हम तैयार नहीं हैं तब इसलिए जरूरी होता है, केवल समर्पण काफी नहीं है, तब इसलिए जरूरी है ताकि हम भगवान प्रकट हों, भगवान कार्य करें तो हम उसको तैयार रहें, नहीं तो हम टूट जाएंगे, अर्थ टूट जाएगी, उसका क्या फायदा है। सोल और परमात्मा का साक्षात्कार हो गया लेकिन पूरी प्रकृति छिन्न भिन्न हो गई। तो यहां उसका वर्णन है, इफ वंस इट मेट द इंटेंस ओरिजिनल फ्लेम ए जेल इज दिस इमेंस मेटीरियल वर्ल्ड, जी ए ओएल इज ऑल्सो प्रोनाउंस्ड एज जेल, द सेम मीनिंग भी सेम है, ए जेल इज दिस इमेंस मेटीरियल वर्ल्ड, सबसे बड़ी जेल। हमको लगता है जेल में वो, ये भी जेल है। जेल क्यों है? जो आनंद, जो प्रेम, जो ज्ञान, उससे हम वंचित हैं, हमको नहीं दिया जा रहा, उसकी जगह हमको रूखा सूखा भोजन दिया जा रहा है, किस चीज का, प्लेजर और पेन का, ये भोजन है। लेकिन भोजन तो हम आनंद के अधिकारी हैं, पर वो नहीं दिया जा रहा, ये जेल का। अक्रॉस ईच रोड स्टैंड्स आर्म्ड ए स्टोनाइड लॉ, एट एवरी गेट द ह्यूज डिम सेंटिनल स्पेस। और इस जेल में किसने बंदी बना के बैठे हुए हैं दरवाजे पर, भय, शंका, अवसाद, ये जेल के बाहर मुस्तैद बैठे हैं। आप बोलिए कि हमको भगवान से मिलना है, भगवान कुछ नहीं होता, शंका, इधर चलो, अपना बैलेंस मत लूज कर दो, जो जीवन जी रहे हो वही ठीक है। वर्ल्डली प्रूडेंस, वो भी एक बैठा हुआ है द्वारपाल। अवसाद, अरे भगवान भगवान छोड़ो, पहले देखो जीवन में कितनी कठिनाइयां हैं, तुम्हें तो अभी डिप्रेस हो जाना चाहिए। अवसाद, ये सब जेल के पहरेदार हैं। यूज डिम सेंटिनल्स, दिखाई नहीं देते हैं पर आक्रमण करते हैं, जैसे आप इस रास्ते पर मुक्ति की ओर बढ़ोगे वो आपको धक्का दे देंगे। ए ग्रेट ट्रिब्यूनल ऑफ द इग्नोरेंस एन इंक्विजिशन ऑफ द प्रीस्ट ऑफ नाइट। कल ये आज बात हो रही थी ना क्रिश्चियनिटी की, जो उन्होंने किया था, जो कुछ मारा काटी, इंक्विजिशन बोलते थे, जज करते थे तुम अच्छे क्रिश्चियन हो या नहीं हो, तुम पापी हो। देखिए कहां क्राइस्ट ने सिखाया पत्थर मत मारो वैश्या को भी, तुम पापी हो, तुमने ये किया, क्रिश्चियनिटी को फॉलो नहीं किया, तुमको हम मार देंगे। तो यहां पर उसका वर्णन है, ग्रे इंक्विजिशन, इंक्विजिशन ऑफ द प्रीस्ट ऑफ नाइट। कौन कर रहे थे ये इंक्विजिशन? स्वयं को वो बता रहे थे कि हम तो पंडित हैं, लेकिन थे कौन, किसके पंडित थे? प्रकाश के नहीं थे, अंधकार के थे, प्रीस्ट ऑफ नाइट। कितनी अद्भुत बात है, हमारे यहां भी ऐसे होते हैं ना, पंडित लोग क्या फेरे में आप कभी चले गए तो बस दिमाग को एकदम आप पर राहु है, हमेशा कोई ना कोई राहु केतु कहीं बैठा होता है और आदमी फिर उसमें एक बार उस चक्रव्यूह में फंसा तो पंडित का जब तक घर नहीं बन जाता, उसका बेटा सेटल नहीं हो जाता, तब तक कोई राहु केतु नहीं उतरेगा, कहीं ना कहीं कोई आता ही रहेगा। मतलब उतने देर में आप भगवान को पा लेते उतना श्रम करके, लेकिन ये जरूर बैठा रहेगा राहु केतु, छोड़ेगा नहीं आपको, क्योंकि उस बेचारे को भी तो अपना रोजी रोटी चलानी है, उसका कोई दोष नहीं है, उसको भी तो अपना काम करना है, आप अपना काम कर रहे हो अपना काम। तो यहां पर उसका वर्णन है, एन इंक्विजिशन ऑफ द प्रीस्ट ऑफ नाइट इन जजमेंट सिट ऑन द एडवेंचरर सोल। जॉन ऑफ आर्क ईश्वर की वाणी सुनती थी और क्या किया पादरियों ने उस समय की, अग्नि को स्वाहा कर दिया ना 19 वर्ष की एक कन्या को, कि नहीं ये भगवान की वाणी सुनती है, इसको तो शैतान ने पकड़ लिया है, इसको अग्नि को स्वाहा कर दिया। ये हुआ है इंक्विजिशन, ये भी इंक्विजिशन का ही पार्ट था। और वो नहीं काम करे, एंड द डुअल टेबल्स एंड द कार्मिक नॉर्म रिस्ट्रेन द टाइटन इन अस एंड द गॉड। आप जेल से मुक्ति चाहते हो, अच्छा मुक्ति चाहिए ठीक है ठहरो, तुम्हारा हिसाब किताब करना है। अब हिसाब किताब में अच्छा तुमने काम तो बड़ा अच्छा किया है, ऐसा करो मुक्ति नहीं, हम तुम्हें एक इससे बेटर जेल दे देंगे। अब क्या हुआ, आपको ब्राइब हो गया, हाँ मुक्ति पता नहीं उसके बाद मुझे खुद यहां तो सब खाना पीना, अब इससे बेटर अगर मिल जाएगा तो क्या प्रॉब्लम है, हमारी कंडीशंस बेटर हो जाएंगी। या तुम मुक्ति चाहते हो, तुमने बड़ा उपद्रव किया है, वापस जाओ, तुम्हें तो 100 कोड़े पड़ने हैं। सो यहां पर उसका वर्णन है, पेन विद इट्स लैश, जॉय विद इट्स सिल्वर ब्राइब, रिस्ट्रेन गार्ड द व्हील सर्कलिंग इमोबिलिटी। देखिए हम लोग देवी देवता के पास जाते हैं, क्यों जाते हैं, कुछ पाने के लिए जाते हैं, कई बार मिल भी जाता है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमको वो मिलता है लेकिन जो असली चीज है वो नहीं मिलती। गोवर्धन के पास आप जाएंगे, वृंदावन में है ना गोवर्धन परिक्रमा, पहले तो पूरी परिक्रमा लोग करते होंगे पैदल, फिर कहा बड़ा मुश्किल है तो अब कार में परिक्रमा हो जाती है, वो भी मुश्किल है, टाइम कम है, तो अब क्या है गोवर्धन मंदिर है, देखा है आपने उसमें एक 2 फुट का पत्थर है, ये भी उसी गोवर्धन का, इसके आप 7 फेरे लगा दो सेम है। अब वो पंडित वेट कर रहा है कि आपके फेरे कब खत्म हो और उसका 100 रुपया कब, हाँ उसका 55 वेट कर रहा है वो, अब आपकी पूरी हो जाएगी। जब आदमी गोवर्धन गया तो ये सब मांगने गया या गोवर्धन धारी को देखने गया, दिस इज द कैच, वो ये सब दे देंगे जिसमें हम बंधे रहे, लेकिन जो जिसने गोवर्धन पर्वत को कानी उंगली पर उठा लिया उसका महात्म क्या होगा, तो वहां नहीं ले जाएंगे, फंसा देंगे इस फेरे में। तो यहां पेन विद इट्स लैश, जॉय विद इट्स सिल्वर ब्राइड, जहां मन्नतें पूरी होती हैं बड़ी खतरनाक जगह होती है, जहां मन्नतें पूरी नहीं होती वो तो फिर भी भगवान एक न्याय कर रहा है, आप भगवान की ओर मुड़ोगे, लेकिन जो मन्नतें फट से पूरी कर रहा है, कामनाओं में और फंसा रहा है, ऐसा नहीं कि भगवान नहीं करते, लेकिन हम सीधा डायरेक्ट सुप्रीम से करें ना, जो भी हमको मांगना है नहीं मांगना है उनको कहें, तो वो फिर देंगे भी लेकिन फंसने नहीं देंगे। युधिष्ठिर पांडवों को उन्होंने बचाया भी लेकिन फंसने नहीं दिया किसी भी चीज में, तो डायरेक्ट उनसे मांगे। लेकिन यहां पर उसका वर्णन है, ए बॉन्ड इज पुट ऑन द हाई क्लाइंबिंग माइंड, ए सील ऑन द टू लार्ज वाइड ओपन हार्ट, डेथ स्टेज द जर्निंग डिस्कवरर लाइफ, दस इज द थ्रोन ऑफ द इनकॉन्शियंट सेफ। इसीलिए एक जन्म में आदमी केवल इतना सा यात्रा कर पाता है। नेक्स्ट पेज की 2-3 लाइन पढ़ के हम लोग रुकेंगे, देखते हैं पेज 19। लेकिन सावित्री तो फंसने वाली में नहीं है, वो तो उस चक्रव्यूह को तोड़कर वो चाबी हासिल करके उन सबको निकालने के लिए आई हैं, जैसे मोसेस ने कभी सब गुलामों को आजाद किया था, तो उनका तो प्रयोजन कुछ और है। तो पेज 19 नीचे से 5 लाइन ऊपर, सी मैच्ड विद द आयरन लॉ हर सॉवरेन राइट, हर सिंगल विल अपोज्ड द कॉस्मिक रूल। कंस तुम गलत कर रहे हो, तुमको इतना टैक्स नहीं लेना चाहिए, बच्चा कह रहा है। सिंगल विल अपोज द कॉस्मिक रूल, क्यों हम उनको मक्खन देंगे, हम तो वृंदावन का मक्खन वृंदावन में रखेंगे, कंस का इस पर अधिकार क्या है। दैट इज हाउ कृष्णा स्टार्टेड द रिवोल्यूशन, सबकी मनोदशा बदली, ये तो गलत टैक्सेशन सिस्टम है। नहीं, राजा है, राजा भगवान का प्रतीक है, कोई भगवान का प्रतीक नहीं है, भगवान तो तुम स्वयं हो। कैसे लिबरेट किया उन्होंने एक एक ग्वाल बाल को। अच्छा, हमको पूजा कर लेने दीजिए इंद्र की, इंद्र की पूजा क्यों महाराज, वो तो डिल्यूज फ्लड आ जाएगा। कोई बात नहीं, तुम्हारे अंदर साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर है। देखिए, सबसे लिबरेट कर रहे थे वो ग्वाल बाल को। दिस इज द ब्यूटी। तो सावित्री केवल उस घेरे के अंदर फंसने के लिए नहीं, उससे मुक्त करने के लिए। टू स्टे द व्हील्स ऑफ डूम दिस ग्रेटनेस रोज एट द अनसीन्स नॉक अपॉन हर हिडन गेट्स हर स्ट्रेंथ मेड ग्रेटर बाय द लाइटनिंग्स टच। अनसीन्स नॉक, मृत्यु जब आती है तो दो प्रकार की प्रतिक्रियाएं, भयभीत हो जाते हैं लोग, अरे 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 मरने का दिन आ गया, जैसे कंस था। अनसीन्स नॉक कब आएगी, 8वीं संतान के बाद। भयभीत हो गया एक राजा जिसके पास सब कुछ, एक बच्चे से भयभीत हो गया, कल्पना कीजिए। ये उसकी मनोदशा हो गई कि सब कुछ होते हुए भी एंजॉय नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसको रोज एक एक दिन लग रहा है मैं मृत्यु के करीब आ रहा हूं। लेकिन एक दूसरी दशा होती है, वो होती है स्ट्रेंथ, जो देवत्व को धारण करके आते हैं वो उससे और स्ट्रांग हो जाते हैं। उसका उदाहरण आता है रामायण में या महाभारत में भी। रामायण में जब परशुराम आते हैं, चैलेंज करते हैं राम लक्ष्मण को, तो बड़ी देर तक राम जी चुप रहते हैं। लास्ट में कहते, देखिए महाराज, आप बहुत शक्तिशाली हो, हमें मृत्यु का भय नहीं दिखाइए, क्योंकि अगर हमें मृत्यु भी चैलेंज करेगी तो हम उसको अपोज करेंगे। तो चैलेंज करके आपको हम आदर कर रहे हैं, मेरा भाई थोड़ा बड़बोला है, लेकिन चैलेंज मत करिए हमें, क्योंकि हम सूर्यवंशी राजकुमार हैं, और यदि मृत्यु भी सामने आकर हमको युद्ध के लिए ललकारेगी तो हम उसका भी सामना करेंगे। दिस इज इंडिया, ये भारतवर्ष है। भयभीत, डरे हुए, ये भारतवर्ष नहीं है। तो केवल नाम की वो पासपोर्ट है केवल भारतवर्ष का, यहां पर उसका है। इसी ओपोजेस द कॉस्मिक रूल, मृत्यु भी आए तो हम उसको कहें रुको, अभी मैं ध्यान में हूं, अभी मैं सावित्री पढ़ रहा हूं, खत्म कर लूं तब मैं चलूंगा, बंदी बनकर नहीं चलूंगा, राजा की तरह चलूंगा, क्योंकि मैं उनका पुत्र हूं, तुम नहीं ले जा सकते मुझे। ये वी कैन से दिस, हमारे पास ये चॉइस, लेकिन उसके पीछे एक पूरी योग यात्रा है। तीन चार लाइन नीचे, शी फेस्ड द इंजिन्स ऑफ द यूनिवर्स, ए हार्ट स्टूड इन द वे ऑफ द ड्राइविंग व्हील्स। जो नियति का चक्र है, अचानक उसके सामने एक संकल्प शक्ति को धारण करके सावित्री खड़ी हो जाती है। इट्स जायंट वर्किंग्स पॉज्ड इन फ्रंट ऑफ ए माइंड, इट्स स्टार कन्वेंशंस मेट द फ्लेम ऑफ ए सोल। और फिर जब यह आत्म तत्व जागृत होता है तो क्या संभव नहीं है। ए मैजिक लिवरेज सडनली इज कॉट दैट मूव्स द वेल्ड इनएफेबल्स टाइमलेस विल, ए प्रेयर ए मास्टर एक्ट ए किंग आइडिया कैन लिंक मैन स्ट्रेंथ टू द ट्रांसेंडेंट्स फोर्स, देन मिरेकल इज मेड द कॉमन रूम। ए प्रेयर, मारकंडे के सामने जब काल आते हैं, मृत्यु, यमराज, तो क्या करते हैं, प्रेयर, महाकाल की शरण में चले जाते हैं। शिवजी कहते हैं यू कैन नॉट टेक हिम, तुम ही शरण में, प्रेयर, मास्टर एक्ट। बुद्ध देखते हैं सब मरते हैं, सब बीमार होते हैं, मास्टर एक्ट, एक स्ट्रोक में आगे बढ़ जाते हैं। खोजूंगा मैं उस शक्ति को जिसके अंदर इस सब को निराकरण करने की पॉसिबिलिटी है, मास्टर एक्ट, एक किंग आइडिया। किंग आइडिया, हम क्यों जन्म लेते हैं? मरने के लिए। प्रेम क्यों होता है? टूटने के लिए। सुख क्यों आता है? दुख की छाप छोड़ने के लिए। रूपांतरण, जब तक ये देह रूपांतरित नहीं होता तब तक हमारे ऊपर दुख की, अनित्यता की छाप पड़ी रहेगी, मृत्यु की। किंग आइडिया, किसी ने सोचा नहीं ऐसा। ए प्रेयर, ए मास्टर एक्ट, ए किंग आइडिया। तब हम क्या होता है? ट्रांसेंडेंट फोर्स, तब उससे हम जुड़ जाते हैं। देखिए कितना अद्भुत तरीका जोड़ने का। देन मिरेकल इज मेड द कॉमन रूल। वन माइटी डीड कैन चेंज द कोर्स ऑफ थिंग्स, ए लोनली थॉट बिकम्स ओमनीपोटेंट। फिर थोड़ा सा वर्णन है कि अभी हमारी अज्ञान की दृष्टि में ऐसा लगता है कि प्रकृति का चक्र चलता जा रहा है, नियति का चक्र, हम उसमें हेल्पलेसली बंधे हुए हैं। परंतु सत्य ये नहीं है। सत्य ये है कि इस प्रकृति के पीछे प्रकृति के स्वामी खड़े हैं। कॉन्शियसनेस स्टैंड्स बिहाइंड द ब्रूट मशीन। तो हमारे पास ये चुनाव है कि हम उसमें फंसे रहें या स्वामी को पकड़ लें, तो वो हमको इस चक्र से बाहर। नेक्स्ट पेज पे, ए गॉड हेड स्टैंड्स बिहाइंड द ब्रूट मशीन, पेज 21। This truth broke in a triumph of fire. A victory was won for God in man. The deity revealed its hidden face. जब सावित्री मृत्यु का साक्षात्कार करती हैं कि आज सत्यवान की मृत्यु होती है, तो सावित्री हेल्पलेसली नहीं कहती है क्या करूं मैं, भाग्य में ऐसा लिखा था, कोई बात नहीं, स्वीकार करती हूं। नहीं, सावित्री अपने अंदर स्वयं अग्निकुंड बन जाती है। ट्रायम्फ ऑफ फायर, लुक एट दिस लाइन, अग्निकुंड बन जाती है। उनकी पूरी देह मन प्राण सब उस अभिप्सा में जलने लगते हैं और प्रत्युत्तर में उनके अंदर वो तो साक्षात जगत जननी है, वो जागृत होती है। ये यज्ञ है वो, बाहर युग यज्ञ फेंक के चावल घी वो नहीं होता है, अपने अंदर उस अग्नि को धारण करना और तब उनका आवाहन करना। देखिए वर्णन कितना सुंदर है इसका। दिस ट्रूथ ब्रोक इन ए ट्रायम्फ ऑफ फायर, ए विक्ट्री वॉज वन फॉर गॉड इन मैन। जिस व्यक्ति ने स्वयं को पूरी तरह यज्ञ कुंड बना लिया, दैट इज द विक्ट्री ऑफ द गॉड इन मैन। द डेटी रिवील्ड इट्स हिडन फेस। द ग्रेट वर्ल्ड मदर नाउ इन हर एरोज, ए लिविंग चॉइस रिवर्स्ड फेट्स कोल्ड डेड टर्न, अफर्म द स्पिरिट्स ट्रेड ऑन सरकमस्टेंस। जब साक्षात माँ भगवती जाग जाए किसी के अंदर, तो कौन सी चीज उसको रोक सकती है? जब किसी ने श्री अरविंद के बारे में पूछा, उनकी वाइफ मृणालिनी देवी ने शारदा माँ से, कहती उन्हें, वो जब जेल में थे, अरे उनको तो जगत जननी माँ ने अपनी गोद में ले लिया, उनका कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई उनको हानि नहीं पहुंचा सकता। बट दैट कॉन्शियसनेस वुड बी, उस चेतना में जीना, उस चेतना में उठना, उस चेतना में सोना, उस चेतना में कि माँ जगत जननी हमको लेके जा रही है अपनी गोद, किस चीज का भय होगा? प्रेस्ड बैक द सेंसलेस डायर रिवॉल्विंग व्हील एंड स्टॉप द म्यूट मार्च ऑफ नेसेसिटी, ए फ्लेमिंग वॉरियर फ्रॉम द इटर्नल पीक्स, एम्पावर्ड टू फोर्स द डोर डिनाइड एंड क्लोज्ड, स्मोट From death's visage, its dumb absolute, and burst the bounds of consciousness and time. मृत्यु जब आती है तो सावित्री कहती है, क्या परात पर ब्रह्म ये मुखौटा पहन के आए हो? स्मोट फ्रॉम डेथ्स विसाज, मुखौटा वो चीर देती है उस आवरण को, तो भगवान अनावृत होकर खड़े हो जाते हैं। दिस इज, शी विल डू दिस सब्सिक्वेंटली, यहां पर उसका वर्णन कितना अद्भुत है। देखिए तो सावित्री से बढ़िया कोई एपिक हो नहीं सकती, इसमें सारे रस मिल जाते हैं, करुणा, वीर, अद्भुत, सारे विभत्स रस, जब वो डार्कनेस डिसेंट इनटू नाइट, प्रेम, सौंदर्य, सारे के सारे रस, शांति, सौम्य, सब रस इसके अंदर मिले हुए।